इस कदर खौफनाक दिन ने आगे आ रहा, जरा सोचो तो सही, जरा इमेजिन करो अपने आप को उस हशर के मैदान में। अल्लाह ताला ने इंसान को लाके खड़ा कर दिया उस मैदान में, जहां सब जमा, तिल धरने की जगह तक नहीं, सबके फैसले हो रहे हैं, जरा भी ना इंसाफी नहीं हो रही। वुफियत कुल्लु नफ्सिम्मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी के साथ कोई भी ज्यादती कमी जुल्म नहीं किया जाएगा। जहां पे हर एक को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जा रहा है, वहां पे मुझे बताएं कि कोई मुजरिम है तो कोई आके कैसे उसको हाथ पकड़ के उठा के ले जाए कि नहीं, ये तो मेरा जानने वाला है और ये तो मेरा मुरीद है और इसको तो मैं इसका हिसाब किताब नहीं होने दूंगा, किसकी जरूरत होगी। तो सोचो खुद को वहां पे, तुम कहते थोड़े दिन के लिए आग में जाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे, जरा खुद को इमेजिन करो तो सही उस जगह पर जहां पे सब अकेले अकेले खड़े होंगे, बिल्कुल तन्हा, जरा सा भी इंसान के अंदर थोड़ा शऊर हो ना, हिस हो, तो झुरझुरी आ जाती है, दिल कांप उठता है कि कितना खौफनाक दिन होगा। वो सिर्फ एक सवाल किया गया, जवाब इंसान पे छोड़ दिया गया कि अब खुद ही सोचो तुम उस वक्त मेरा बनेगा क्या। सब जमा होंगे लेकिन स्टिल इंसान बिल्कुल अकेला होगा, ऑल अलोन। इतनी मखलूक है, कोई नहीं है जो रह गया। वो फियत कुल्लु नफ्स, हर नफ्स को, अमीर है, गरीब है, औरत है, मर्द है, बूढ़ा था, जवान था, बच्चा था, जो भी था, हर एक को जो उसने कमाई की उसका बदला मिल जाए। बादशाह था, फकीर था, तो ऐसे मजमे में एक इंसान का सिर्फ यही सब तस्वर करे ना कि मैं बिल्कुल तन्हा होंगी, बिल्कुल अकेली मुझे अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, तो वही चीज इंसान को इतना परेशान कर देती है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है पूंजी, और अल्लाह वो है जो मेरे दिल के अंदर के हालात को भी जानता है, मेरे आमाल नामे में एक एक चीज उसके हाँ रिकॉर्ड है, एक एक अमल रिकॉर्ड है उसके हाँ, मैं बच कैसे सकूंगी, ये चीज उसको बहुत परेशान कर देती है। फिर वो ये नहीं सोचता हमने तो आग में जाना है थोड़े दिन के लिए, अब मुझे फलां बचा लेगा या मुझे फलां कुछ कर लेगा। अभी मैंने आपको बताया पैगंबर तक नहीं बचा सके, और किसी का क्या कहना। अल्लाह ताला ने पूछा है बताओ उस वक्त क्या बनेगा तुम्हारा, जमा तो होना ही है चाहे तुम चाहो नहीं चाहो, जमा ना हम जमा करेंगे, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई चॉइस है तुम्हारे पास कि आना है तो आ जाओ नहीं आना तो नहीं आओ, नहीं, ये खौफनाक धमकी है। और जब वहां पे हिसाब किताब होने लगा, नेमतों का हिसाब, हकूक का हिसाब, जुबान से निकले हुए अल्फाज का हिसाब, बंद कमरों की बातों का हिसाब, जो आगे भेजा उसका हिसाब, जो पीछे छोड़ा उसका हिसाब, जो दिलों में छुपा हुआ था उस सबका हिसाब, तो मुझे बताएं ऐसे वक्त के लिए कौन किसको याद रखेगा। हर एक को अपनी अपनी नहीं पड़ी होगी क्या। तो इस धोखे में इस दुनिया में ना रहें कि कुछ नहीं होना और ऐसे नहीं होगा। हमने जहां पे इन लोगों की और चीजों को कॉपी किया है ना, वहां पे हमने इनके अकीदे को भी कॉपी कर लिया, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वही अकीदे हमने भी अपना लिए। हालांकि हमारे भी यहाँ पे कोई किसी जगह पे भी कुरान और सुन्नत में ये नहीं, आप जो मर्जी करो बस एक दफा कलमा पढ़ लो उसके बाद आप काफी आपके लिए। हाँ ये है जरूर हदीस में कि ईमान अगर जरा बराबर भी होगा तो एक दिन जहन्नुम से निकल आए ईमान, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कलमा को जिसने कलमा पढ़ लिया है उसके अंदर ईमान भी हो, जरूरी नहीं हर मुस्लिम मोमिन भी हो। हर मुसलमान के अंदर ईमान है क्या, मुंह से जुबान से तो कलमा पढ़ा हुआ है क्योंकि बॉर्न मुस्लिम थे, बस ठीक है मुसलमान घराने में पैदा हुए, उसके बाद ईमान नाम को भी नहीं है, पता ही नहीं ईमान क्या है। तो फिर ईमान अलग चीज है, कलमा पढ़ना अलग चीज है। ईमान अगर वाकई सच्चा ईमान हुआ तो फिर तो निकल जाएंगे। और अगर ऐसे हुआ कि जो अब देखे मुनाफिकीन भी तो थे, उन्होंने भी तो कलमा पढ़ा था, वो नमाजें भी पढ़ते थे, लेकिन जहन्नम में होंगे, सबसे नीचे होंगे जहन्नम में। तो बात है ईमान की, बात जुबानी कलामी बातें करने की नहीं है। अल्लाह ताला उस दिन की दहशत से और उस दिन की मुश्किलों से और उस दिन के खौफनाक मनाजिर और अंजाम से हम सबको महफूज रखे, क्योंकि वो दिन बहुत सख्त है और अल्लाह ताला ने हम पे छोड़ दिया। अब खुद ही सोच लो कि क्या बनेगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा। अब ये वो आयत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कोई तंगदस्त है या मकरूज है वो इस आयत को पढ़ेगा, आयत नंबर 26 और 27 बेगैरी हिसाब तक कुल अल्लाहुम्मा से लेके, तो अल्लाह ताला उसके हालात जरूर बदल देगा। क्योंकि एक रिवायत में आता है कि हजरत मुआज जो थे वो एक बार कर्ज की शिकायत की थी, वो जुमे की नमाज पे नहीं आ सके थे क्योंकि उन्होंने एक यहूदी का कर्ज लौटाना था और वो यहूदी उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैंने जाने नहीं देनी। तो इस पे उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को ये दुआ सिखाई और फरमाया ये ऐसी दुआ है कि तुम पर ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का तुम्हारे लिए इंतजाम फरमा देगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त दुआ। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि इसमें इसमें आजम है इस दुआ में, तो जिनको भी ऐसी रिस्क की तंगियां हों या कर्ज हों तो उनके लिए बहुत अच्छी ये दुआ है। इसी तरह तबरानी में भी एक रिवायत है कि क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताऊं कि अगर तुम वो दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा, ख्वाह वो ही शबीर के बराबर हो, वो ही शबीर के बराबर हो। तो पढ़ो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क और बेगैरी हिसाब तक, ये इंशाअल्लाह ताला दुआ देखते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकल मुल्क, ए मालिक मुल्क के बादशाहत के मालिक, मुल्क है सल्तनत गलबा मिल्कियत इख्तियार। जो इंसान का जब कोई बादशाह होता है तो जाहिर है उसकी मिल्कियत होती है ना, उसका इख्तियार होता है, फैसले उसके चलते हैं। तो मालिक है तमाम बादशाहत का, ऐसी कायनात का अल्लाह ताला मालिक है, सूरज इसका गुलाम, चांद उसका गुलाम, तारे उसके गुलाम, फरिश्ते उसके गुलाम, सब के पर वो एक तने तनहा बादशाह है। और वो जिसको चाहता है फिर वो बादशाह देता है। तो अतिल मुल्का, तू देता है बादशाहत मन तशा हो जिसको तू चाहता है, इसलिए कि सारी बादशाहत तो उसके पास है ना, जिसको चाहे बादशाह बना दे। हालांकि आपने देखा होगा दुनिया में लोग बादशाहत के लिए कत्लो गारत करते हैं, कोई किसी से जंग कर रहा है, कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, ये सब दुनिया में हो रहा है ना। तो हम सोचते हैं कि उसने इससे छीन लिया, उसने उससे करके बादशाहत ले ली, वो दुनिया में असबाब तो बनते हैं लेकिन असल फैसला अल्लाह ही का होता है, फैसला उसके पास से आता है कि किसने बादशाह बनना। तो अल्लाह ताला देता है बादशाह जिसको वो चाहता है, वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ, और जिससे चाहता है बादशाहत को छीन लेता है। इस दुनिया में आपने देखा होगा बड़े बड़ों को अल्लाह ताला नीचे गिरा देता, और कई ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ नहीं समझते और सोचते हैं कि ये क्या चीज है और ये क्या है और ये तो हमारे घर के नौकर हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, उनको अल्लाह बादशाहत अता कर देते हैं, खजाने सारे हैं उसके पास है। ये जो बादशाहत का खजाना है, इज्जत का खजाना है, रोजी रिस्क रोजी का खजाना है, जितने भी ये खजाने हैं ना, सेहत का खजाना है, ये समझ लें, ऐसे ही आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। देखिए मसलन है कि अगर एक कमरा है जिसकी चाबी मेरे पास है और अगर आपको वहां से कोई चीज चाहिए तो क्या होगा? आप मुझे कहेंगे कि कमरा खोलें तो मुझे वहां से चीज चाहिए। जब तक मैं कमरा नहीं खोलती तो आप वहां से चीज नहीं पा सकते। तो आपको अब कुछ लेना होगा तो आपको मेरे पास आना होगा कि नहीं आप चाबी लगाएं हम मेरे लिए ये चीज मुझे वहां से दें। अच्छा इसी तरह ये समझ लें कि जो खजाने हैं ना ये सारे, इनकी चाबियां इनकी कुंजियां अल्लाह के पास हैं। जिसके लिए वो चाहे वो दरवाजा खोलेगा तो उसको मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। ये आयात ना इंसान को दूसरे हर दर से बेनियाज कर देती हैं, हर जगह झुकने से बेनियाज कर देती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है सारे खजानों का मालिक तो वही है। यही चीजें हमें चाहिए होती है ना, वो मुल्क चाहिए, बादशाह चाहिए, कहीं का इकतदार चाहिए, कहीं की कुर्सी चाहिए, कहीं बड़ा होना चाहिए, कहीं इज्जत चाहिए, कहीं सेहत चाहिए, कहीं रोजी चाहिए, यही चाहिए होता है ना इंसान को। इसी के लिए इंसान औरों के दरों पे जाता है, वहां पे माथे टेकता है, कभी किसी की खिदमत करता है, कभी किसी के आगे बिछ बिछ जाता है, कभी किसी की चापलूसी करता है, कभी किसी की खुशामद करता है। और नहीं, कहीं पे भी नहीं तुम्हें जाने की जरूरत। ये सारे खजाने तो अल्लाह के पास है, उसके पास है सारी चाबियां। तुम्हें कुछ चाहिए ना तो जब तक वो नहीं दरवाजा खोलेगा अपने खजानों का, तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है। और देखिए तंजयू का आया, लेने का वैसे कोई और वर्ड भी आ सकता था, लेकिन तंजयू आया है। मैंने आपको कहा ना खींच लेना, छीन लेना, जान निकलने के लिए, रूह के निकलने के लिए भी यही वर्ड आता है ना, क्योंकि रूह भी जिस्म से निकलना नहीं चाहती तो उसको खींच के निकाला जाता है। तो ये बादशाहत भी कोई देना थोड़ी चाहता है। कभी कोई देखा है जो बंदा खुद ही कह रहा हो कि मेरे से बादशाहत ले लो? नहीं, हर एक बादशाहत अपने पास रखना चाहता है, तो वो छीन लेता है। यानी इंसान का कोई बस नहीं है कि वो अपने पास रख सके, जब उसकी मर्जी आए, जब उसका वो चाहता है छीन लेता है, ले लेता है वापस। अब इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले कि नहीं मैंने नहीं देनी, कोई कुर्सी है, कोई ओहदा है, आप बादशाहत को ये ना सिर्फ समझें कि बादशाहत पता नहीं मुझे पूरे मुल्क की बादशाहत मिल जानी है। नहीं, आपके घर की बादशाहत हो गई, आपकी कोई और आपको ओहदा मिला हुआ है, कोई और आपको कोई इज्जत का मकाम मिला हुआ है, कहीं पे भी पावर मिली हुई आपको, तो छीन लेता जिससे वो चाहता, जिसको चाहता दे देता, और जब चाहता है लेता और जब चाहता देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं और आप कितने बेवकूफ हैं कि हम अपने आप को परमानेंट मालिक समझ लेते हैं किसी भी चीज का, कि बस ये मेरी चीज है तो अब मेरी है, कोई नहीं मेरे से ले सकता। नहीं, जो दे रहा है वो ले भी सकता है, दी भी तो किसी और ने है ना, तो जिसने दी है वो ले सकता। मेरे और आपकी ये जो हम अपनी अथॉरिटी समझते हैं, मिल्कियत समझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मेरी चीज है, तो ये किसने आपको कह दिया कि आपकी चीज है? नहीं, ये तो अल्लाह ने दी हुई है, ये तो अमानत है, कोई भी चीज आप ले लें। मालिक अल मुल्क की मर्जी है तो आज आपको मिली हुई है, मालिक अल मुल्क की मर्जी नहीं होगी तो छिन जाएगी, लूज हो जाएगी आपसे। क्या आप अपने सामने मिसालें नहीं देखते? बड़े बड़े लोगों की मिसालें देखते हैं ना, कितने ही लोग आपके सामने दुनिया में, अगर आपकी नजर है आप देख लें, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह थे और आपके सामने उनको फांसियां लगी, आपके सामने उनके इख्तदार छिन गए, बहुत पावरफुल थे वो। किसी ने भी किया वो, हम इस चीज की उसमें नहीं जाते क्योंकि फैसला अल्टीमेट अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं चलता। तो अब जब उसने दी है चीज, हम देखते हैं कि लोग आज तख्त पे हैं, कल तख्तादार पे हैं, कल गले में फंदा पड़ा होता। इसी तरह कोई नीचे आज फकीर है और फिर हम देखते हैं वो महलों में रह रहा। वक्त एक साथ नहीं रहता, याद रखें। और ये भी समझ आ जाए हम सबको कि जो भी हमारी मिल्कियत में चीजें हैं वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो टेम्प्रेरी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें उनका मालिक बनाया है। अब मसलन मिसाल के तौर पे देखें, एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी हुई है। अब वो एम्प्लॉयज कहने लगे ये तो गाड़ी हमारी है, कह सकते हैं हमारी गाड़ी मगर है तो कंपनी की ना, कंपनी ने दी भी है, कल को कंपनी वापस ले लेती है। कई अपनी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती रहती है, तो आप वो कहें कि मैं तो अब जाए इस गाड़ी को कहीं मारूं, टक्कर लगाऊं, चाहे इसको बेच दूं, चाहे इसको खराब करूं, मेरी मर्जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। बैक ऑफ हिज माइंड ये होता है कि ये कंपनी की गाड़ी है, हमें जो भी चीज मिली हुई है ना वो मालिकल मुल्क की दी हुई है, हम कैसे उसमें अपनी मर्जी चला सकते हैं? ये बताएं, ये जिंदगी किसने दी है, ये माल किसने दी है, ये वक्त किसने दी है, ये सलाहियतें एनर्जीज आपको किसने दी हैं? हाँ देखो तो सही कि अच्छा, फिर इंसान ना हमारे कॉन्सेप्ट्स देखिए यहां से पता चलते हैं। जब आपको कोई कहता है अपना वक्त अल्लाह के लिए लगाएं, तो आप कहते हैं नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, तो वक्त का मालिक तो आपने खुद को समझ लिया ना फिर, वरना वक्त का मालिक अगर आप अल्लाह को समझते कि ये जो मेरे पास वक्त है इसका मालिक तो अल्लाह है, ये वक्त, ये जो जिंदगी मुझे दी है ये तो अल्लाह की अमानत है, तो जहां वो कहता है मैं वहां नहीं लगाऊंगी, तो फिर आपने अपने आप को मालिक समझा ना। आप ये कह रही हैं कि नहीं अल्लाह का नहीं है ये मेरा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी करूंगी, मैं खुद फैसला करूंगी कि मैंने इसको किधर लगाना है। ये जो हमें फैसले करने में, डिसीजन मेक करने में मुश्किल आती है ना कि मैं अपनी एनर्जीज कहाँ लगाऊं, मैं अपने पैसों को कहाँ लगाऊं, मैं अपनी स्किल्स को कहाँ लगाऊं, वो इसलिए आती है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी मिल्कियत समझते हैं, अगर हम ये समझेंगे कि ये मालिक की हैं, तो फिर मुश्किल नहीं आएगी, फिर उसके रास्ते में ही लगेंगे। अब कंपनी ने गाड़ी दी है तो कंपनी के काम के लिए तो आप यूज ना करें और कहें कि नहीं वो वहां के लिए नहीं, मैं तो अपनी और कामों के लिए यूज करूंगी, ऐसे तो नहीं हो सकते। तो हम वैसे तो कहते हैं हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज उसने दी भी है, मगर जहां कुछ लगाने का मामला आता है तो कहते हैं क्यों, मेरी जिंदगी है, मेरा टाइम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पैसे हैं। अल्लाह कहता है सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम तो ये कह दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी तो नमाज, मेरी तो कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए, यही ईमान है ना। इंसान कहता क्यों, मैं क्यों दूं, मेरी जिंदगी, तो मालिक तो आप खुद बन बैठे हैं। तो याद रखो हुआ तो आइज्जु मन तशाओ, और इज्जत का मालिक भी वही है, इज्जत के खजाने भी उसके पास हैं, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीआ, बेशक इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है। आप देख लें, इसीलिए अबू जहल इतना बड़ा इज्जत वाला बना फिरता था, दो बच्चों ने उसको कत्ल किया और उसकी लाश एक कुएं में पड़ी हुई थी, और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से मिस्र के इकतदार पे पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, लाग ऐसे रहा है कि शायद दर बदर हो रहे हैं, मगर अल्लाह ने इज्जतों के दरवाजे खोल दिए। कितनी इज्जत मिली कि आपसे ज्यादा इज्जत वाला तो कोई है ही नहीं, सिर्फ 8 साल के बाद उसी जगह को फतेह कर रहे हैं। इज्जत जिसको चाहे दे और जिसको चाहे जलील कर दे, तो यही चीजें हम अपने लिए चाहते हैं ना, इज्जत चाहते हैं, जिल्लत से बचना चाहते हैं, बादशाहत के छीनने से बचना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ जाओ, ये सब चीज वहां से मिलेगी। बियदिकल खैर, सारी भलाई है अल्लाह तेरे हाथ में है। यही जो मैं अभी बात कह रही हूं ना कि खजाने सारे उसके हाथ में, खैर के खजाने उसके हाथ में, जिसको चाहे खैर दे दे, जिसको खैर चाहिए ना, भलाई चाहिए, वो उसी से मांग ले। और दूसरा मतलब इसका क्या है, तेरे हाथ में खैर ही खैर है अल्लाह, तू जो करता है ना उसमें खैर है। हमें चाहे उसके अंदर कोई शर नजर आ रहा, हमें चाहे उसके अंदर कोई ऐसी बात नजर आ रही हो कि ये तो सही नहीं, इसके अंदर तो कोई, मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें क्या खैर हो सकती है। कई दफा ऐसे होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, हम कहते हैं इसमें क्या भला खैर हो सकती है। तो अल्लाह तआला ने फरमा दिया बियदी कल खैर, तुम ये कह दो कि अल्लाह सारी भलाई तेरे हाथ में, तेरी तरफ से भलाई भलाई होती है। मोमिन के लिए उसके हर वाके में, हर काम में अल्लाह ताला खैर ही डाल देता है, चाहे वो अपने लिए उसको बुराई समझता हो। आसान तकराहु शैअन वहुआ खैरुन लकुम, हो सकता है तुम किसी चीज को अपने लिए बुरा समझो लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर है। जैसे सूरह कहफ आप पढ़ते हैं, देखते हैं ना उसके अंदर कैसे अल्लाह ताला ने एक बच्चे को मौत दे दी तो उसमें भी माँ बाप के लिए खैर थी। क्या एक कश्ती को तोड़ दिया गया, उसमें कश्ती वालों के लिए खैर थी, लेकिन बजाहिर तो सारे शर के काम नजर आ रहे थे। तो किसी चीज के पीछे क्या खैर है हम नहीं जान सकते। हमारी शायद सारी जिंदगी हमें समझ ना आए, मगर हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि बियदी कल खैर। हम शॉर्ट साइटेड है ना, हमें तुम्हारी नजर देखें कितनी, थोड़ा सा देख सकती सामने की दो चार चीजों को। अल्लाह की नजर आखिर तक देखती है, उसको पता है। तो इसलिए ये यकीन हमारे अंदर होना चाहिए कि बियदी कल खैर, कभी भी ना ये सोचें कि इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में आने लगे, बस बियदी कल खैर। इन्नक आला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक के वो हर चीज पर कादिर, हर चीज देने पर कादिर है, लेने पर कादिर है। वो क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, लिमिटलेस। उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक कि उसकी कुदरत किधर तक जाती। इसीलिए हम कहते हैं आला कुल्ली शैइन। अब आप देख लें हमारे कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये बोलना ना बड़ा आसान है, ये आयत को, और बड़ी प्यारी भी लगती है, इसका जो रिदम है वो इतना खूबसूरत है ना, हम अगर इसको याद आप करें ना, ब्यूटिफुल आयत। लेकिन इसका अकीदा, इसका यकीन दिल में बिठाना, ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान इंसानों की तरफ देखता है इज्जत पाने के लिए, उनके साथ ताल्लुकात बनाता है, पैसे वालों के साथ उठता बैठता है। अगर कोई जरा सी बात कह दे तो सोचता है कि मेरी इज्जत चली गई, मेरी इंसल्ट हो गई। क्या वो ये फिर वाकई समझता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में? नहीं, हम तो समझते हैं इज्जत इंसानों के हाथों में, अरे मैं इंसानों की नजर में इज्जत वाली बन गई तो मैं इज्जत वाली, उन इंसानों ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो मैं बुरी हो गई। नहीं, अल्लाह के हाथ में इज्जत, जिसको चाहे मुअज्जज कर दे। बिलाल हबशी हैं, गुलाम हैं, इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जो उनका आका था वो इतना तशद्दुद करता था, इतना मारता था। अब कोई देखने वाला कहे कि ओह ये तो जलील हो रहा है, नहीं, उनसे ज्यादा इज्जत वाला कौन हो सकता है, जिनके कदमों की चाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे आगे सुनी। फरमाया बिलाल जब मेराज पे गए थे, बिलाल मैंने तुम्हारे कदमों की चाप अपने आगे सुनी है। सुभान अल्लाह, इतनी ऊंची उड़ान हो गई उनकी, हालांकि गुलाम है, हालांकि काले हैं, हबशी हैं। इज्जत अल्लाह के पास है, वो जिसको चाहे दे। आज लोग फखर से अपने बच्चों का नाम बिलाल रखते हैं, क्योंकि वो इज्जतों वाले थे।